بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بعد نماز جمعہ بھی تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنائی جاتی ہیں. عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ کے ارشادات و فرمودات سنائے جاتے ہیں، کتاب کوئی سی بھی ہو. آج کل یہ انفاس عیسیٰ جو حضرت کے ملفوظات کا ہی ایک مجموعہ ہے، اور حضرت کے بڑے خلفاء میں سے تھے، بہت متقدم حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرکزہ، ان کا جمع کیا ہوا ہے اور نام حضرت ہی کا تجویز فرمایا ہوا ہے. حضرت تھانوی قدس روح کا حضرت کی حیات و زندگی ہی میں یہ انہوں نے مرتب کر لیا تھا، انفاس عیسیٰ حضرت نے نام رکھا تھا. ایک بہت قیمتی بات نظر پڑی، ارشاد فرمایا جہاں کسی شخص کی حالت چھپانے سے دین کا یا دوسرے مسلمانوں کا یقیناً یا ظناً ضرر ہوتا ہو. یہ امت کے حکیم کا کلام ہے، کوئی قید و شرط کبھی حذف نہیں ہوتی، اتنا جامع معنی ہوتا ہے. جہاں قید کی ضرورت ہو تو چھوٹتی نہیں، اور جہاں بات مطلق ہو تو زائد قید آتی نہیں. جامع معنی کلام. جہاں کسی شخص کی حالت چھپانے سے دین کا یا دوسرے مسلمانوں کا، اور کوئی لکھتا تو کہتا ضرر ہوتا ہو، مگر حضرت نے لکھا یقیناً یا ظناً. بعض مرتبہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بالیقین ضرر ہو، چاہے یقین کا درجہ نہ ہو اگر ظن غالبی ہو، وہاں اس کی حالت ظاہر کر دینا چاہیے. یہ شرعی بات ہے، اور ہمارا عرفی اور رسمی مزاج کچھ اور ہے. وہاں ہم اپنی طبیعت کو دیکھتے ہیں، اپنی مصلحت دیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اسے پتہ چل جائے تو وہ کیا سمجھے گا، کیوں سمجھے گا. زندگی انسان کو شرعی گزارنی چاہیے، نہ طبعی نہ رسمی نہ عرفی. بعض جگہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی بہت اچھا، یعنی وہ معاملہ شرعی بھی ہے، طبعی بھی ہے، اور رسم و رواج بھی اسی کے موافق ہے، رسمی اور عرفی بھی ہے، تو سبحان اللہ کوئی عرض نہیں. لیکن اگر کہیں تعارض ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ چاہا ہے کہ اب میری منشا دیکھو، میرا قانون دیکھو، یعنی شرعی معاملہ دیکھو، عرفی اور رسمی یا طبعی اور اپنا عقلی یہ بھی نہ دیکھو. اسی لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ چونکہ شرعی معاملہ دیکھتے ہیں، رسمی عرفی نہیں دیکھتے، اور طبعی اور عقلی بھی نہیں دیکھتے، تو بہت سے لوگوں کی نظر میں مطعون رہتے ہیں، متہم رہتے ہیں، مجروح رہتے ہیں. اسی لیے حضرت اقدس تھانوی قدس روح کا ایک جگہ ارشاد ہے کہ جو جتنا بڑا محقق ہوگا اتنا ہی زیادہ بدنام ہوگا. بتائیے حضرت کا یہ متن اور یہ کلام میرے نزدیک تو بدی ہی ہے، اور حضرت نے وجہ بتائی اس کی، اس لیے کہ جہاں اس کی نظر پہنچے گی اور اس کے پیش نظر وہ معاملہ کرے گا، وہاں دوسروں کی پہنچے گی نہیں، تو اس لیے اس پہ اعتراض کریں گے، تنقید کریں گے، تبصرے کریں گے. جو جتنا زیادہ محقق ہوگا، بڑا محقق ہوگا، اتنا ہی زیادہ بدنام ہوگا. اور خود امت کے حکیم اور ملت کے مجدد اس کی زد میں آئے، بہت بدنام ہوئے حضرت، بہت بدنام کیا لوگوں نے، کوئی پرواہ نہیں کی. گورنمنٹ کا پٹھو بتایا، انگریز کا وظیفہ خور وظیفہ خار بتایا، اور اللہ جانے کیا کیا بتایا، کہیں پرواہ نہیں کی. جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے وہی بات کہی، وہی طرز اختیار کیا، بالکل نہیں ہٹے. تھانہ بھون کے لوگ بھی حضرت سے کتنے بدزن ہو گئے ہوں گے، جو قتل کی دھمکی تھانہ بھون والوں نے دی تھی،
बताइए,
ये परवाह नहीं करते, ये शरीयी बात है। हमारी लोगों की आजकल की जिंदगी औरफी और रस्में या तबीयत और अक्ल, और अक्ल जो नाशी हो मसाले है दुनियाविया से, और एक वो अक्ल है कि जो मुआफिक होती है शरीयत के, वह अहलुल्लाह की अक्ल होती है। जहां किसी शख्स की हालत छुपाने से दीन का या दूसरे मुसलमानों का यकीनन या जन्नन जरर होता हो, वहां उसकी हालत जाहिर कर देना चाहिए। अब हजरत ने इसकी मिसालें दी, ये पहली बार सुनाया जा रहा है मलफूज। देखिए फरमाया, मुहद्दिसीन का रुवात हदीस पर जराह करना, मुबतदे और गुमराह कुन की बिदअत का जाहिर करना, मुस्तशार को मुस्तशार फीह की हालत का मुस्तशीर से बयान करना, और मजलूम का जालिम की शिकायत करना, सब इसमें दाखिल है। ये दोनों बातों की मिसालें हो गई। मुहद्दिसीन का रुवात हदीस पर जराह करना, अल्लाह ताला ने ऐसे उलमा पैदा किए जो जरह तादील के अइम्मा थे, माहिरीन। जितने लोगों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब बातें और अहादीस मनकूल और मरवी थी, उन्हीं को रावी कहते हैं, रुवात। तो एक एक के ताल्लुक से बाल की खाल निकाल के रख दी, कच्चा चिट्ठा जाहिर कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। रोया करते थे बाज ऐसे उलमा, कहा करते थे कि क्या बताएं, अफसोस हमें उन लोगों पर जरह करनी पड़ी जिन्होंने हमसे 500 साल पहले जन्नत में अपने ठिकाने बना लिए हैं, और अपने झोपड़ियां बना ली हैं, और अपना निजहाइश का इंतजाम कर लिया है, मगर अल्लाह के हक और दीन के हक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक की वजह से हमें यह काम करना पड़ा। कोई मसलहत किसी तरह की पेश नजर नहीं रही, सिर्फ कानून बारी तआला की हिफाजत, सुन्नत रसूल अला साहिब सलातु व तस्लीम की हिफाजत, और सबसे बड़ा हक तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो उस हक की अदायगी, ये उसकी मिसाल हो गई। कहेगा दीन का जरा, मुहद्दिसीन का रुवात हदीस पर जराह करना, अगर न करते तो फिर ये दूध का दूध और पानी का पानी अलग कैसे होता, और ये दीन महफूज कैसे रहता, सही और गलत में इम्तियाज कैसे होता, हक और बातिल का पता कैसे चलता, सही हदीस गलत हदीस ये दोनों अलग अलग कैसे होती, और न होती तो फिर दीन भी वैसा ही रहता, खिचड़ा बना रहता। सब किया। इसी तरह मुबतदे गुमराह कुन की बात का जाहिर करना, एक शख्स ऐसा है कि जो अल्लाह के कानून के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ बातें गलत सलत किस्म की अपनी तरफ से निकालता है, ऐसे बहुत से इस्लाम में फिरके पैदा हुए, तो जो उलमाए अहले हक थे अहले सुन्ना वल जमा, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने, सब पर तनकीद की, जराह की, उन्होंने भी हक और बातिल में इम्तियाज की लकीर खींच दी, खत इम्तियाज खींच दिया, और सब किया। कहे के लिए किया ताकि हक हक रहे, बातिल बातिल रहे, सुन्नत सुन्नत रहे, बिदअत बिदअत रहे, सही सही रहे और गलत गलत रहे। मुबतदे गुमराह कुन की बिदअत का जाहिर करना, ये मिसाल तो हो गई ऐसी कि जहां दीन का जरर था अगर उनकी हालत जाहिर न की जाती। और दो मिसालें हजरत ने दी, मुसलमानों का यकीनन या जन्नन जरर, मुस्तशार को मुस्तशार फीह की हालत का मुस्तशीर से बयान करना, इसमें बहुत कमी है, बहुत कमी है। यानी आवाम बेपढ़े लिखे लोगों का तो क्या, जो अहले इल्म हैं, उलमा कहे जाते हैं, हजरत अक़दस्तानी क़ुद्दुस सिर्रहु ने तो एक जगह लफ्ज अफसोस अफसोस, पहले तो मुलूक और सलाती दुनिया के बादशाह भी गलत मशवरा नहीं देते थे, और अब अहले इल्म और उलमा ने भी गलत मशवरा देना शुरू कर दिया। इसकी मिसालें दी।
یہ کیا چیز ہے؟ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کسی سلسلے میں رائے اور مشورے کا طالب ہے. کرتے ہیں لوگ, کبھی بڑوں سے کرتے ہیں عام طور سے, برابر والوں سے بھی کرتے ہیں, کبھی بڑے چھوٹوں سے بھی کرتے ہیں. تو جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ ہے مستشار, عربی زبان کا لفظ ہے. اور جو مشورہ کر رہا ہے وہ ہے مستشیر, اور جس سلسلے میں مشورہ کر رہا ہے وہ ہے امر مستشار فی. اب یہاں شرعی بات کیا ہے, شرعی تقاضا کیا ہے, شریعت کی رہنمائی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المستشار مؤتمن, جس سے کسی سلسلے میں مشورہ لیا جا رہا ہے تو اسے وہ امین ہے, امانت دار ہے. اسے یہ چاہیے کہ اپنے علم و دانستہ کے مطابق امانت کا معاملہ کرے, خیانت کا معاملہ نہ کرے, صحیح بات بتائے, غلط نہ بتائے. یعنی اس کی تو اجازت ہے کہ آدمی کسی ایسے موقع پر جب اس کی کوئی ایسی خاص مصلحت متاثر ہوتی ہو تو یہ کہہ دے کہ بھائی تم اس سلسلے میں مجھ سے نہ پوچھو, میں نہیں کہہ سکتا, میں نہیں بتا سکتا. کوئی خاص ضرر متوقع ہے اسے ظن غالب کے درجے میں یا یقین کے درجے میں, لیکن اس کی کسی حال میں اجازت نہیں ہے کہ رسمی اور عرفی یا طبعی اور عقل مادی کے تقاضوں کی بنیاد پر آدمی اسے غلط مشورہ دے. اللہ کے رسول, اور ایسے موقع پر تو بعض مرتبہ اگر آدمی کی کوئی دینی دنیاوی مصلحت متاثر نہ ہوتی ہو اسے آگے بڑھ کے بغیر کسی کے مشورہ لیے تب بھی مشورہ دے دینا چاہیے. اور جب کوئی مشورہ لے ظاہر کرے تب تو اگر ایسی بات نہیں ہے تو ضرور صحیح بات بتانی چاہیے. حدیث شریف میں قصہ موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہندہ زوجہ ابو سفیان کا غالباً واقعہ ہے, انہوں نے کچھ مشورہ کیا تھا, دو شخصوں کی طرف سے انہیں پیغام نکاح دیا گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور مشورے کے اس کا اظہار کیا. تو ظاہر ہے شارع ہیں, آپ کی طرف سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس کا شائبہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کر دے جو شرعی نہ ہو اور عرفی رسمی ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا, صاف دونوں کے عیب صاف بتا دیے. فرمایا کہ اما معاویتو اما ابو الجہم, یا اما معاویتو فسعلوک لا مال لہ و اما ابو الجہم فضراب للنساء. رہے معاویہ, وہ تو غریب ہیں, زیادہ وسعت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, اور پتہ ہی تھا کہ ان کا معاملہ جو ان سے ہوا تھا انہیں یہی شکایت تھی کہ وہ اچھی طرح کشادگی کے ساتھ فراخی کے ساتھ مجھے خرچہ نہیں دیتے, نان نفقہ نہیں دیتے, اس لیے وہ تو پھر وہی بات پیش آئے گی. اور دوسرے جو ہیں ابو الجہم, اردو میں جسے کہتے ہیں لٹھیت, ہیں وہ تو, اور ایک حدیث شریف میں تو یوں ہے کہ لا یزع عصاہ عن عاتقہ, ہمیشہ ڈنڈا سنبھالے رکھتے ہیں. وہ لٹھیت ہیں, اب دیکھ لو ان کے ساتھ کیسے نکاح ہو سکے گا. صاف فرمایا کہ ان کی ہی اسامہ بن زید, حالانکہ فی الجملہ یہاں موضع تہمت تھا, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی صحابی کا ذہن جا بھی نہیں سکتا کبھی. اسامہ ابن زید کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی بالکل جیسے اپنی اولاد. بھائی حضرت زید تو متبنا تھے, زید ابن حارثہ, اور ان کے صاحبزادے دونوں حب رسول اللہ کہلاتے تھے, مگر ظاہر ہے کہ کسی صحابی کے ذہن میں شائبہ تک نہیں ہو سکتا. اور جگہ تو سوچنا پڑے گا, آج سوچنا پڑے گا, امتی کو سوچنا پڑے گا, اگر کہیں موضع تہمت ہو سکتا ہو تو نہ کہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے عیب بتا دیے اور صاف فرمایا کہ تم اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو. یہ ہے شرعی معاملہ. آج کل کوئی طالب علم اگر کسی اہل علم سے, عالم سے, استاد ہوں اس کے یا اس کے شیخ ہوں یا مدرسے کا محتم ہو یا کوئی مدرس ہو, कोई मशवरा ले तो शायद 100 में एक दो मिलेंगे जो सही मशवरा दे, नहीं देते सही मशवरा। यहाँ वही मुरूवत और अपने ज़ाती किस्म के रवाबित और ताल्लुकात और मसालेह, ये वो मसाले हैं जिन्हें हजरत थानी कुद्दुस रूह फरमाया करते थे कि मेरे यहाँ तो मसालेह पीस दिए जाते हैं तो सालन और लजीज होता है। वो सालन उतर ले जाके फरमाते थे ये मसालेह दुनिया जब तक नहीं पीसे जाएंगे तो दीन के सालन में लज्जत पैदा हो ही नहीं सकती। कोई मसालेह दुनिया का ख्याल नहीं करता जो अहलुल्लाह में से होता है, किसी ने ख्याल नहीं किया। लोग मसाले दुनिया में कहते हैं कि भाई मुदर्रिस क्या सोचता है, अगर मैंने यूँ कह दिया कि दारुल में दाखिला ले लो और मोहतिम को पता चल गया तो उसे क्या जवाब दूंगा, मुंह कैसे दिखाऊंगा, और तो समझेगा कि ये तो भाई मदरसे का मुखालिफ है। यानी जहाँ वाकई उसका इल्म का फायदा, दारुल की तो मैंने मिसाल दी, किसी दूसरे इदारे में अगर उसका इल्म का इल्मी और अमली नफा और फायदा ज्यादा है और ये समझता भी है, लेकिन तब भी अल्लाह का बंदा ज़ाती मसलिहत की वजह से उसकी इल्मी और मसलिहत, इल्मी और अमली मसलिहत को गारत करता है अपनी इस महूम मसलिहत की वजह से कम अहले इल्म को तो ना चाहिए। भैया तो ये कह दे ज्यादा ज्यादा, भाई तू मुझसे ना पूछो इस सिलसिले में, बस मैं नहीं कह सकता, बस ये कह दे, गलत मशवरा देते हैं, यानी यही बहुत सी मदद करते, हालांकि पता है। और मोहतिम तो कभी जाने देना ही नहीं चाहता, और अगर चला गया तो फिर शायद उससे ताल्लुक भी खत्म, और उस मदरसे का जो मुदर्रिस है वो भी नहीं पढ़ते रहो, भी तो यहाँ तो निसाब है, हालांकि पता है कि यहाँ पढ़ने में उसका इल्मी और अमली दोनों जरा मसला है, और जिस इदारे में वो जाना चाहता है वहाँ इल्मी या अमली या दोनों किस्म का नफा और फायदा है, तो शरीयत का हुक्म क्या मुतवज्जे है कि उसे मशवरा ये दो कि हाँ वहाँ ले लो दाखिला, वहाँ पढ़ लो, मगर नहीं करते आजकल ऐसा, बड़ा मामला गड़बड़ है इन अहले इल्म का भी उलमा का भी। मुस्तशार को ऐसे ही मामला है, किसी को बताना हो भाई मैं तदरीस का ताल्लुक कायम करना चाहता हूँ, वहाँ भी सही मशवरा नहीं देते, कोई रस्मी और उर्फी किस्म का मिजाज व मजाक है लोगों का, शरई मिजाज व मजाक कम रह गया। मुस्तशार को मुस्तशार फी की हालत का मुस्तशीर से बयान करना, बताना चाहिए जब मशवरा लिया जा रहा है, मैं कहते हैं भाई मैं इस्लाही ताल्लुक उनसे कायम कर लूँ, हाँ हाँ कोई हरज नहीं, हालत हरज है, ये जानता है उनकी कमियों को, उनके मायब को, उनके नकाइस को, उनकी मक्कारियों को, लेकिन फिर भी नहीं कहे क्यों, हो सके हो पता चल गया है तो मेरा जो हल्का फुल्का ताल्लुक है या कुछ ज़्यादा गहरा ताल्लुक है वो मुतासिर हो जाएगा। असल सारा मामला यह ज़िंदगी गुजारने के दो नुक्ते नज़र हैं, एक तो आदमी इस बात को सामने रख के ज़िंदगी गुजारे कि आखिरत कैसे बनेगी और मौला और मालिक राज़ी और खुश कैसे होंगे, ये बिल्कुल इसकी पटरी अलग है, और एक इस बात को सामने रख के ज़िंदगी गुजारे दुनिया वाले खुश कैसे रहेंगे और कोई मुझसे बिदकेगा कैसे नहीं, दोनों पटरियां अलग हैं, बहुत मुश्किल है कि दोनों कहीं मिल जाएं पूरे तौर से, नहीं मिल सकती, दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। अब देख लो कि काम आने वाली चीज़ क्या है, लोगों का ख्याल क्या काम आएगा। हजरत वाला शाहरुद्दीन रूह की रात में जो बात सुनाई जा रही थी, सारा जहां खिलाफ हो परवाह न चाहिए, मद्दे नजर तो मर्जी जाना न चाहिए, अब इस नजर से जांच कर तू कर ये फैसला क्या क्या तो करना चाहिए क्या क्या न चाहिए, और नफे दीनी देख तू दुनिया की बहबूदी न देख, मर्जी रब देख अपनी मसलिहत कोई न देख, तू अकेला तेरे दुश्मन सैकड़ों ये भी न देख, कुदरत हक पर नजर रख अपनी कमजोरी न देख। ऐसे ही मजलूम का जालिम की शिकायत करना, ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहरा बिस्सूई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, किसी ने किसी को सताया है तो उसे हक है कि उसके उस जुल्म को बताए, उसके उस जुल्म को जाहिर करे, उसे इजाजत है, गुंजाइश है, और बाज़ मरतबा तो जरूरी तक हो जाएगा, फरमाया सब इसमें दाखिल, लेकिन इतनी बात अगर बयान करके ख़त्म हो जाते तो फिर हजरत थाने कुद्दुस रूह कहाँ थे। जहाँ ये कानून बताया, अब देखो इस पर आगे जो नज़्म व इंतज़ाम की खातिर आगे क्या पहरा बिठाते हैं। फरमा मगर मैं अवाम को मुतनब्बह करता हूँ कि वो इस कुल्लियों को खुद इस्तेमाल न करें। तदबीक में, तफरीह में इसके इस्तेमाल में गलती हो सकती है, बल्कि जिसकी वो गीवत करना चाहें वो ये समझेंगे मैं तो इसलिए उसकी बुराई बयान कर रहा हूँ, और होगा मामला अपने नफ्स व नफसानियत का, भड़ास निकालना चाहेंगे। हज़रत क़ारी तैयब साहब को तसल्लु फरमाया करते थे कि अब झगड़ा तो होता है नफसानियत का और लोग मसाइल को आड़ बना लेते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ मामला जो हुआ। फरमाया जिसकी वो गीबत करना चाहें उसमें पहले मुज्तहिद और मुतदय्यिन उलमा से फतवा लें। मुज्तहिद मुराद वही फकीह अहले इल्म अहले फतवा जो हैं उनसे पूछो हालात बयान करके। हाँ इसीलिए आगे फरमाया उसकी तशरीह, इज्तिहाद से मेरी मुराद ये है कि वो फुकहा के अकवाल को वाकियात पर सही तौर पर मुंतबिक कर सकता, यानी फकीह। कभी कोई पकड़ ले कि मुज्तहिद तो है नहीं, है फकीह मुराद है जो फिक्र तफक्कुह का हामिल है, खास अहवाल में खा अहकाम फिक्रिया व शरिया को समझता है, उससे पूछें। और ये इज्तिहाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, इज्तिहाद फिल मज़हब मुज्तहिदुन दून मुज्तहिदिन, हाँ बल्कि क़यामत तक बाकी रहेगा। और तदय्युन की जो कैद लगाई, देखो हजरत ने जो फरमाया, ये नहीं फरमाया किसी मुफ्ती से पूछ लें, मुफ्ती आजकल कैसे कैसे मुफ्ती, हाँ इन्ना लिल्लाह, कहा फकीह और मुतदय्यिन आई कैद तदय्युन की। तदय्युन से मुराद ये है कि अगराज का ताबे न हो। आजकल बहुत मौलवी हैं अगराज के ताबे बस, और जहाँ अपनी गरज पूरा करने का मौका मिल जाए किसी मसले का सहारा ले लेते हैं, और चाहे फिर वो उन्हीं पर लौट जाए, उन्हीं ही शिकार होना पड़े, हाँ के खींच कर नाजायज को हद जवाज में न लाए। अगराज का ताबे न हो कि खींच कर जायज को हद जवाज में लाए। जो अगराज का ताबे हो उसका उसकी तफसीर है। चुनाचे हम रात दिन देखते हैं, और हजरत का जमाना तो गोया कि आज के लिहाज से खैरुल कुरून था, 80 साल 100 साल पहले की बात है ये, कि मौलवी जिसकी गीबत करना चाहते हैं उसे हद जवाज में ले आते हैं। कहते भाई हमारा मकसद उनकी तनकीद नहीं, बल्कि हम तो लोगों की इसलाह के लिए, मेरे ताल्लुक से एक मौलवी साहब ने ऐसा ही किया, वो जो मैं दुआ कराया करता हूँ तदफीन के बाद, तो वो इत्तेफाक से बुलाया तो मुझे ही गया था, मैं तो जा नहीं सका वहाँ, वो वक्त ऐसे ही था, पहले से इत्तला नहीं थी, उनको मौका मिल गया। तो बजाय इसके कि वहाँ कुछ और बातें बयान करें, इसलाह की तो बहुत बातें थी, कहते हैं कि आजकल बाज़ लोग तदफीन के बाद दुआ कराने लगे, ये साबित नहीं। कह तो दिया उन्हें, पड़ा और उन्हीं के हलक की हड्डी बन गया ये, फिर जब उन्हें पता चला कि कितना साबित है, हालांकि मुफ्ती भी नहीं है, उन्हें शर्माना चाहिए था, लेकिन उनके साथ कोई मुफ्ती थे, वो मुफ्ती थे वो मुदर्रिस उनके मदरसे थे, तो वो तो मोहतिम की मंशा को देख करके फतवा दे देंगे, और फिर बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, हमारे बाद अहबाब ने उनसे बात की, और जो उन्हें दिखाने शुरू किए फतावा तो चकाचौन हुए, फिर शर्माए। तो ये तहकीक तो बगैर तहकीक के, फिर मकसद था मेरी वक़्त व अहमियत को कम करना, वो कहाँ से कम हो जाएगी। मैं तो जब तक तहकीक नहीं करता मसले के ताल्लुक से, न कहता और अमल तो करता ही नहीं, जब पूरी तहकीक कर लेता हूँ तब कहता हूँ बात। ऐसे ऐसे मौलवी हैं हासिदीन, अल्लाह ही नहीं दहेज दे, जिसकी गीबत करना चाहते हैं उसे हद जवाज में ले आते हैं, ये साबित नहीं है। मैंने कहा बारात ले जाना तो साबित है, और दो दो चार चार हज़ार कार्ड छपवाना वो भी अच्छे खासे, ये तो साबित होगा, और बारात घरों में ठहरना और वहाँ इस तरह से खाना खाना ये भी साबित होगा, और ये भी साबित होगा। और ये जो उम्मत इतनी कहते हैं, वो अंदेशा ये है कि बाद में भी तक और वो अरे मैंने कहा जो बिदात बनी हुई उन्हीं की इस्लाह कर लो। अंदेशा ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी अमल है ये काना के साथ है। अल्लाह के रसूल लुकते थे और इस्तिगफार करते थे और बाकायदा सहाबा से कहते थे सब अहादीस सहीह में, और मुफ्तियान किराम ने बहुत ने लिखा रखा है, मगर बेचारों को ये हसद ऐसी चीज है कि सब चीजों पे पर्दा पड़ जावे तो शर्मिंदा हुए। ऐसे होते हैं मौलवी, हद जवाज में ले आते हैं कि हमारी नीयत इस गीबत से दूसरे की तहकीर नहीं है बल्कि मुसलमानों की इस्लाह मकसूद है ताकि उसके शर से महफूज रहें। मगर हक ताला के सामने इन ताबीलों का चलना दुश्वार है। देख लो भाई ये तो मामला बंदे का अल्लाह के साथ है, क्योंकि वो खूब जानते हैं कि तुम्हारा मकसूद शिफाए गैस और दूसरों की तहकीर है। कार हा बा खल्क आरी जुमला रास्त, बा खुदा तस्वीर व हीला कै रवास्त, कार बा ऊ रास्त बायत दाश्तन, रायते इखलास व सिद्क फराश्तन। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, अगर चरत ने एक तशरीह नाम नहीं दिया। कार हा बा खल्क आरी जुमला रास्त, ठीक है मखलूक के साथ तो तुम जो चाहो कर लो कर लो के सब ठीक है, बाखुदा तजवील और हीला का ज़ात बारी ताला और मौला और मालिक के साथ में ये हीला हवाला कैसे चलेगा। कार बाऊ रास्त बाए दाश्तन रायते इखलास व सिद्क़। अल्लाह ताला के साथ बंदे को अपना मामला वही रखना चाहिए जो है, सही सही मामला रखना चाहिए और वहाँ सिद्क और इखलास का झंडा बुलंद रखना चाहिए, वरना काम नहीं चलेगा। बस आज के हजरत के इस इरशाद में सबक यही है कि हमें अपना मिजाज और मजाक और तरीक शरई रखना चाहिए, न कि उर्फी और रस्मी और तबी और अकली। बस अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।